ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था, 8/10/1966 शनिवार को दूसरे पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी। स्नान करने की कोई बात नहीं है नदियों या पोखरों में, ये तो किस ज्ञान स्नान की बात है। शास्त्र पढ़ने की भी कोई दरकार नहीं है। शास्त्र माना ही शासन करने का विधान। ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, तो सिर्फ बाप बैठ करके समझाते हैं क्योंकि पति तो पावन है। ये गंगा आदि नदियां नहीं है, क्योंकि ये पानी की नदियां हैं। पानी को बिलोने से कोई मक्खन या सार नहीं निकलता। वो पानी की जड़ नदियां या ज्ञान जल की चैतन्य नदियां भी कोई नई बात नहीं सुनाती हैं। सार की बात नहीं सुनाती हैं। वही पुरानी पुरानी शास्त्रों की बात, वही पुरानी पुरानी मुरलियों की बात सुनाती है। सार की बात तो शिव बाबा आकर के सुनाते, वो एक ही सुप्रीम टीचर है, आ करके युक्ति बताते हैं। और युक्ति लाते हैं एक दफा, सारे कल्प में एक दफा, और सारी दुनिया एक दफा में ही पति से पावन बन जाती है। तो बाप कहते ही हैं, मैं एक दफा ही आता हूं। क्या कहा? ऐसे नहीं है कि जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, मैं सतयुग में भी 6 का अवतार लेकर के आता हूँ, नरसिंह अवतार। त्रेता में भी राम का अवतार लेकर आता हूँ। द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर आता हूँ। कलयुग में कलंकीधर का अवतार लेकर आता हूँ। नहीं कोई ऐसा है कि 5000 वर्ष की शूटिंग काल में भी सचिव की शूटिंग में कोई सच्छन सच्छित 36 में आता हूँ, बाप भगवान तो एक ही बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार, चाहे ब्रॉड ड्रामा हो या शूटिंग काल हो। भगवान बाप को गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे भी नहीं है कि वो गॉड फादर है, संक्षेत्र में आया, त्रेता युग की शूटिंग के आदि में आया, नहीं, मैं बार बार नहीं आता हूं। ये भी मनुष्यों की बुद्धि में है जरूर कि अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, और सतयुगी नई दुनिया आनी है, जरूर आनी है। पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया होती है, उस समय में बाप को आना है। तो कब आना है? हाँ तो कब होती है? 1936 में होती है कि 1976 में होती है? या कब होती है? है भगवान बाप को कब आना है? आना तो है जरूर, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना उनका ही काम है। उनका कह के दूर क्यों कर दिया है? गायन है, चित्र हैं उनके, परंतु वे भक्त मनुष्य इतने मूढ़ बुद्धि बन गए हैं, माया ने इतने ही तमो प्रधान बुद्धि बनाई है कि कुछ नहीं समझते हैं। कि वो चित्र किस समय की यादगार है? और वो गायन किस समय का है?
अभी का गायन
है। अभी नई दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया आ गई, अंत में हो। कभी कहते हैं अभी, कभी कहते हैं गा। अभी का गायन है, अभी के चित्र हैं या भविष्य के चित्र हैं? चित्र कब के होते हैं? है अभी के हैं या आने वाले भविष्य के हैं? है आने वाले भविष्य के, इसलिए है कि चरित्र है जब संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो संपूर्णता की यादगार चित्र बनाए जाते हैं। अभी कोई भी आत्मा की संपूर्णता है? है? नहीं है। गायन भी उसी समय का है। देखो कितनी तुमको मेहनत करनी पड़ती है, प्रदर्शनियों में कितने बड़े बड़े आदमी आते हैं, आगे चल करके ये सन्यासी भी बड़े बड़े आने लग पड़ेंगे। ऐसे मत समझो, वो नहीं आएंगे। फिर भी आने वालों में कोई समझेगा कोटों में एक, और को में भी को नरसहस्त्र कोटन में को, ये जो गाया हुआ है तो जब कहा जाता है कोटन में को तो समझाते हैं, तब तो कहा जाता है ना। कि कोटों को समझाते हैं, लाखों को, करोड़ों को, और उनमें कोई समझते हैं। तो ये बात समझाते हो ना, करोड़ों को, कितने को समझाया होगा है? अभी तक कितनों को समझाया होगा? है? अरे कोई हिसाब है या नहीं है? बहुत माने कितने है? 77 में प्रदर्शनी अंक की किताब निकाली थी, दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बड़ा मेला हुआ था पहला, उस किताब में लिखा था कि अभी तक माने 77 तक मेला पूरा होने तक 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला। तिहत्तर के बाद 76 आया, 76, 36 से लेकर के 76 तक कितने साल हुए? 40 इयर्स। ज्ञान के हिसाब से त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो गई, राम वाली आत्मा षष्ठी चक्र के हिसाब से प्रत्यक्ष होने लगी, 40 वर्ष में सतयुग की शूटिंग पूरी हुई, 76 में, और 73 में कितने लोगों को संदेश मिला है? 1 करोड़ को। तो 76 तक कितने लोगों को संदेश मिलना चाहिए? 2 करोड़ को। तो बताया कि सन 36 से 73 तक 37 ईयर्स में आधों को संदेश मिला। तो 73 से लेकर के 76 तक 3-4 साल में आधों को संदेश कैसे मिल जाएगा? मिल सकता है? हैं? कैसे हैं? हाँ, बाद में संदेश मिलने की गति उसी गति से तीव्र हो जाती है, जैसे कलयुग के अंत में परमधाम से आत्माओं के आने की गति तीव्र हो जाती है, ढेर की ढेर आत्माएं उतरने लग पड़ती है। ब्राड ड्रामा में संसार रूपी रंगमंच पर उतरती है, जीवन धारण करती है, और शूटिंग पीरियड के ड्रामा में ज्ञान में आत्मिक स्टेज में आती है। आत्मा का परिचय मिलता है। तो देखो, आगे चल करके बहुतों को समझाना होगा, बहुत बहुत चारों तरफ में तुम समझते ही रहती रहे, समझाते ही रहेंगे। आखिरी में तुम्हारी ये समझानी अखबारों में भी पड़ेगी, और ये चित्र भी अखबारों में पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे ना बच्ची। ये सीढ़ी जो है ना, ये भी अखबारों में पढ़ेगी। क्योंकि ये सीढ़ी तो है सिर्फ भारतवासियों के लिए, फिर पूछेंगे, तुम्हारे से पूछेंगे कि ये इतने जो बाकी धर्म वाले हैं विलायत में व यहाँ भी हैं, ये सब वो कहाँ जाएंगे? पर जब यही खत्म होते हैं तो उनके साथ वो खत्म भी होने का है जरूर, क्योंकि ये जब बैठ करके बाप से इनहेरिटेंस लेते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको तो चाहिए। बाकी कयामत का समय सो भी गाया हुआ है कि भाई जब पिछाड़ी आती है कि कयामत का सेग्रीगेशन का समय होता है, कयामत का समय कहा जाता है, वापस जाने का। तो वापस तो जाएंगे ही, जब पुरानी दुनिया होगी और नई दुनिया स्थापन होगी तब सभी वापस जाएंगे। तो ये समझाते भी रहते हैं कि भाई सबको वापस जाना है, यानी विनाश होने का है। गाते भी रहते हैं, गाएंगे भी जरूर कि नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया बदल रही है। देखो गीत भी है, दुनिया बदल रही है, अर्थात ये जो पतित दुनिया है वो बदल करके पावन हो रही है। अभी पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, है? पतित दुनिया को नरक कहा जाता है। क्यों? पावन दुनिया को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? आत्मिक स्थिति होती है, वहां देह बान की स्थिति नहीं होती है। तो इससे क्या हुआ, देह बान की स्थिति नहीं होती है लेकिन देह तो होती है। पुरानी दुनिया में पतित दुनिया में आत्मिक स्थिति नहीं होती है, देवान की स्थिति होती है, लेकिन आत्मा तो होती है ना। तो पावन दुनिया को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावन दुनिया में जो आत्मिक स्थिति होती है वो स्थिति ही स्वर्ग कही जाती है। स्व माने आत्मा, ग माने गया, कौन सी स्थिति में गया? आत्मिक स्थिति में गया। और पति दुनिया को नरक कहा जाता है। जो स्वयं स्थिति में सदैव रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। और नर जिसे मनुष्य कहा जाता है वो देवभान में रहता है। तो देवभान में रहने वाला मनुष्य नर नरक बनाता है। अभी देखो इस दुनिया में आते भी पतित हैं, सत्युग में ये गायन होता ही नहीं है कि सत्युग पावन दुनिया खत्म होती है। पतित पुरानी दुनिया खत्म होती है या पावन दुनिया खत्म होती है? है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया खत्म होती है। क्यों? क्योंकि कांटों के जंगल को आग लगती है। कांटे दुखदाई होते हैं या सुखदाई होते हैं? हैं? दुखदाई होते हैं। तो ये दुनिया सारी कांटों का जंगल बन जाती है। सब एक दूसरे को दुख देने लग पड़ते हैं। कोई मनुष्य नहीं बचता। जो मनसा वाचा कर्मणा दूसरों को दुख देने वाला न हो। कोई देश ऐसा नहीं बचता जो दूसरों को दुख देने के काम न करता हो। तो फूलों के बगीचे को कहा बाग नहीं लगती? क्यों है? फूलों के बगीचे में जल होता है। ये भी ब्राह्मणों की दुनिया है। इसमें भी आग लगेगी या नहीं लगेगी? है नहीं लगेगी? सदा ही फूलों का बगीचा रहेगा ब्राह्मणों की दुनिया में। रहेगा? अभी भी फूलों का बगीचा है, है? सब खुशबूदार फूल है, है? के बदबू वाले बेबिचारी फूल भी है, है या नहीं है? है। तो बदबू छोड़ते हैं तो दूसरों को दुख होता है ना, तकलीफ तो होती है ना। तो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, शूटिंग काल में, और चाहे ब्रॉड दुनिया हो, जब ज्ञान जल सूख जाता है तो जोर से अकाल पड़ता है। पानी की बूंद भी नहीं मिलती है। तब क्या समझा जाए कि अब इस दुनिया में आग लगने वाली है। तो यहाँ ही गाते रहते हैं, दुनिया बदल रही है। अभी कौन सी दुनिया बदल रही है? ये कलयुगी पतित दुनिया बदल रही है। अभी ये भी तो समझ की बात है ना, कि सतयुग में विनाश होता है या कलयुग में विनाश होता है? है? पूरा बदलाव कहाँ होता है? कलयुग में बदलाव होता है। या तो जब स्वर्ग पूरा होता है तब बदलाव होता है, ये भी बाप तुमको समझाते हैं कि दुनिया वालों को कोई ये बात मालूम नहीं है। साधु संत महात्मा को ये बात मालूम ही नहीं है कि दुनिया बदल रही है। सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो जब कि दुनिया बदल रही है तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर ये नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना। क्या कहा है? स्थापना किसकी होगी? स्वर्गवासियों की। स्व माने आत्मिक स्थिति में जो रहेंगे, आत्मिक स्थिति के वासी जो बनेंगे उनकी स्थापना होगी। अभी स्वर्गवासियों की स्थापना कैसे हो रही है सो भी तो तुम समझते हो, और ये भी जानते हो कि कल्प कल्प ऐसे ही स्थापना होती है। जैसे शुरू हुई है अभी भी तो बहुत बरस पड़े है ना, जितना पीछे इतना सीरियस होती जाती है, इतनी मेहनत, इतनी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी, बहुत ही प्रदर्शनी होती जाएगी। देखो दिन प्रतिदिन बुद्धि को होते जाते हैं ना, वृद्धि को होते जाते हैं, कितनी चिट्ठियां लिखनी है, जवाब दिए जाते हैं, हमको प्रदर्शनी करनी है, हमको प्रदर्शनी करनी है, ऐसे चिट्ठियां लिखते हैं ना। तो देखो प्रदर्शनी के भी चित्र बने, और थोड़े राइट चित्र भी बने। थोड़े राइट चित्र कौन से बने है? प्रदर्शनी के ढेर भी चित्र बने और उनमें थोड़े राइट चित्र बने, कौन से है? अरे बाबा ने जो साक्षात्कार से बनवाए वो राइट, और मनुष्यों ने मन मत पर या माया की मत से प्रेरित होकर जो बनाए उनको राइट नहीं कहा। आठ दस छठ की वाणी का तीसरा पेज। राइट चित्र थोड़े हैं, बाकी डिफेक्टेड हैं। अभी वो बेचारे वहां बनाते रहते हैं, जो बाबा उनको बतावे या उनमें से कोई जागे, बाबा हमको बताओ, हम सीढ़ी बना करके बिल्कुल ऐसी सीढ़ी बनाएंगे, बिल्कुल पाइप ऐसे की बात है। बाबा रोज रोज कहते हैं, इसमें बारीकी बड़ी है नॉलेज की, किसमें है? सीढ़ी के चित्र की बात हो रही थी ना, वो एकदम जो भी साधु संत ये सन्यासी ये कांग्रेसी वगैरह एकदम शर्मनाक हो जाएंगे, ये सीढ़ी सिर्फ ऐसी है, परंतु बच्चों को कुछ भी बुद्धि में नहीं है। पारस बुद्धि होनी होती है सर्विस करने से। कितने की सर्विस करनी चाहिए, कितना कल्याण करना चाहिए, बहनों का, भाइयों का, किस न किसका, उनको सिखलाना चाहिए। अरे भाई, हम भारतवासी सतो प्रधान थे, अभी युग बदल गए, हम तमो प्रधान बन गए, अभी फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं सिर्फ बोलते हैं कि हे मन, अब तू मुझे याद कर, मन मना भव, ये गीता में अक्षर है ना, सिर्फ ये भगवान वाच है। कृष्ण भगवान को तो नहीं कहा जाता है, एकदम कभी नहीं कहा जाता, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको कोई भगवान कैसे कह सकते। इसको तो भूले चूके भी भगवान नहीं कहना चाहिए। किसको है, जो 84 के चक्र में आते हैं, उनको भगवान कैसे नहीं कहा जाना, क्योंकि 84 के चक्र में तो उतार भी है और चढ़ाव भी है। चढ़ते हैं तो 16 कला संपूर्ण, उतरते हैं तो कलाहीन, और भगवान क्या कलाओं में चढ़ता उतरता है कि एक जैसा रहता है, वो तो सदैव कलातीत है। तो कृष्ण को तो भूले चूके भी भगवान नहीं कहना चाहिए, और गाते भी हैं, अरे वो जो कृष्ण था ना सतयुग में, और वो जो अंत का जन्म है, वो अभी सांवरा है, गांवड़े का छोरा है, क्या कहा है, जो सतयुग का कृष्ण है वो ही जन्म लेते लेते 84 जन्म में गांवड़े का छोरा सांवरा बना है। उतर गया कि चढ़ गया है, उतर गया। बाबा कहते हैं वो सांवरा काला कृष्ण तो सतयुग के कृष्ण की जूती भी नहीं है, वो भगवान कहां से हो गया। उनकी आत्मा को जो 84 जन्म भोगती है वो गांवड़े का छोरा हो जाता है, तमो प्रधान बन जाता है एकदम। फिर बाप आकर के उस गांवड़े के छोरे को सलोना बनाते हैं। पहले तो गांवड़े का होता है ना, देखो हमारे पास वो भी देखो, गांवड़े का है। ये विश्वरतन ये सब गांवड़े के हैं। किससे किसको टैली किया है? हैं? जो सतयुग का कृष्ण है उसको विश्व रतन से टैली किया। किसके रतन से? सारे विश्व का जो चुना हुआ रतन है, हद के विश्व रतन की बात है या विश्व के बेहद रतन की बात है? वो भी है और ये भी है। ये सब गांवड़े के हैं। विश्व रतन भी गांवड़े का है और ये अंतिम जन्म में ब्रह्मा दादा लेखराज भी गांवड़े का है। ऐसे गांवड़े के छोरे को आत्मा है ना उनमें बच्ची, अभी उनकी आत्मा जानती है कि हम तो विश्व के मालिक थे, और गांवड़े के छोरे जाकर के बने हैं। अभी बड़ा बाबा आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बड़ा बाबा कौन और छोटा बाबा कौन है? बड़ा बाबा आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा क्यों कहा है? क्योंकि बड़ा बाबा भी साकार और निराकार का मेल है, और छोटा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा, वो भी साकार कृष्ण वाली आत्मा अंतिम 84वें जन्म में, और उसमें निराकार शिव निराकारी आत्मा, दोनों का मेल बाबा है। तो देखो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना दिमाग पूर होना चाहिए। अभी उसके लिए कोई बड़ा कपड़ा ऐसा नहीं पहनना चाहिए, कोई भी चीज में मोह तो नहीं रखना चाहिए। ये गुप्त है, जो कहा जाता है ये जो नशा होता है ना धन का, वो भी कोई मुश्किल उतरता है। पहाका देते हैं, एक होती है भैंस और दूसरा होता है बाबड़िया। ये सिंध का पहाका है। ये अपने दूध का उनमें वो नशा रख सकते हैं अंदर में, कितना भी धन आ जाए तो एकदम नहीं उछलना है। परंतु तुम्हारे पास तो देखो कितना धन हो जाता है, देखो अथाह धन। पर तुमको कोई मजबूरी है किसम इस किस्म की? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे साधे। बाप ही बैठ कर देखो कोई बात की मगरूरी है, कितना निरहंकारी बाप और कितना ज्ञान बुद्धि में रहता है। अरे कल हम जा करके अपना वो हीरो जवाहरातों का महल बनाएंगे, वो जो पढ़ाई होती है बैरिस्टरों की, उन बैरिस्टरों की पढ़ाई को तो इसी जन्म में बोलते हैं। अभी हम इम्तहान पास करके बंगला बनाऊंगा, बैरिस्ट्री करूंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, चीफ जज बनूंगा या कोई बड़ा सर्जन बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा वगैरह वगैरह। वो ऐसे कहते हैं ना बच्चे। अच्छा धन कमाते हैं, मैं इतने महल बनाऊंगा। अरे ये आज की दुनिया के महल मानिया, हम तो नई दुनिया में महल बनावेंगे, पुरानी दुनिया में नहीं। ये तो गंदी डरती दुनिया है एकदम। देखो कितने छी छी जीव जंतु हैं और कितने गंदे एकदम बढ़ते जाते हैं। अभी हम कल ऐसी डर्टी दुनिया से, इसको कहा जाता है डर्टी एस दुनिया, पुरानी दुनिया बंजू है एकदम, सो भी किसकी है? मनुष्यों की। तो जगह होती है ईंट और फिर वो बनते हैं, परंतु ये मनुष्य तो जैसे बंजू हुए पड़े, बर्थनाटे पहनी। इसलिए मनुष्यों को कहा जाता है ये कौड़ी के भी नहीं है, कौड़ी की भी इनकी कीमत नहीं। और उन देवताओं का देखो कितना मान है। ये भले सन्यासी बड़े बड़े शंकराचार्य, वो बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल भरतनाट्य पहनी कौड़ी के, तो वो देखो इन चित्रों में वो दिखलाना चाहिए ना। वहां ऊपर में दिखलाना चाहिए, ये हीरे जैसा जीवन। वही 84 जन्म लेकर के कौड़ी जैसा जीवन, पतित और भ्रष्टाचारी। देखो ये नाम कितने हैं एकदम, तो क्लियर लिखना चाहिए। कोई भी आवे तो ये नंबर वन चित्र, एक बेबी चित्र, दूसरा वो चित्र उसके सामने रख दो, दोनों इकट्ठा लगा हुआ। अरे भाई देखो ना, यहाँ बाबा ने समझाया ना, कोई पेंसिल लेकर के उसमें लिख देवे सफेद अक्षर में, लाल अक्षरों में, भाई यहाँ 600-700 करोड़ और यहाँ 9 लाख चाहिए, और यहाँ भी तो आते रहते हैं ना बच्चे समझाने के लिए। तो जट आकर के वहां लिख देना चाहिए, कभी भी कोई आवे तो बोलो, देखो हम जो कहते हैं ना कि 10 वर्ष में हम श्रेष्ठाचारी दुनिया बनावेंगे, तो ये देखो ना, ये श्रेष्ठाचारी भारत था, उस श्रेष्ठाचारी भारत में कितने मनुष्य होंगे, तुम ख्याल करो। 5000 वर्ष पहले ये कितने मनुष्य होंगे, और अभी इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं। इन बातों पर विचार करो, अभी ये महामारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। देखो सभी आत्माएं जा रही हैं ऊपर में मच्छरों के मुआफिक, सो कोई ये तो रिपीट होने की बात है, हो रही है ना बरोबर। देखो यही मूसल है ना, जो महावारी महाभारत युद्ध में मिसाइल्स थे, लोहे के मूसल कहे गए हैं, कहते हैं यादवों के पेट से निकले। अब उस पेट की बात नहीं है, ये बुद्ध रूपी पेट की बात है, जहां से ये मिसाइल रूपी मूसल निकलते हैं। आठ दस 66 की वाणी का 4th पेज, यहां सब कुछ है, ये आग वगैरह ये सब देखो कितनी आग भड़क रही है, कितने ये बॉम्ब्स तैयार हो रहे हैं, ये कितना भी कोशिश करते हैं कि आपस में शांति सुलह हो जावे, बिल्कुल नहीं, जितना कोशिश करते हैं इतना बिगड़ते जाते हैं। और अभी बाबा भी आया हुआ है, अरे बाबा भी आया हुआ है, राजयोग सिखला रहा है, और विनाश भी सामने खड़ा है। ये अभी तुम बैठ करके सुनते हो अच्छी तरह से। बंदर ये है बस, यहाँ जूती बाहर में पड़ी, तुम्हें अभी जूता भी नहीं है। वो चमड़े की जूती जो बाहर में पड़ी है ना, ये ज्ञान सब नंबर वार का उड़ जाता है। जैसे का तैसा एकदम, कुछ भी स्मृति दिल में रहती नहीं है एकदम। अगर स्मृति रहे तो विचारों को शौक चढ़ जावे, हम जाऊं, हम जा करके सर्विस करूं। बाबा बाबा दिल में रहे, हर्षित रहे, इस ज्ञान में बच्ची यहां ही हर्षित होना है, तब वो 21 जन्म में तुम ऐसे हर्षित हो सकेंगे। यहां इसी दुनिया में इतनी खुशी का पारा चढ़ जाए, अभी खुशी का पारा चढ़ेगा सर्विस पर, तो देखो अभी सर्विस ही क्या करते हैं। और ये बाबा तो जानते हैं, ये तो जो जहां के आते हैं वो उनको जानते हैं। ये बाबा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को जानते हैं ना, छोटी सी बातों में एकदम मुरझा तुरझा जाते हैं। अरे अच्छा, कोई न कोई भूल की, कोई हर्जा नहीं है, हंसते रहो, ड्रामा के प्लान अनुसार हंसते रहो। चलो मुझे तो सर्विस करनी है ना, ऐसे थोड़े ही किन के कारण मुझे सर्विस को कोई छोड़ देना है, नहीं। रूठ करके घर में थोड़े ही बैठ जाना, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सर्विस तो जरूर जाकर की करनी है, सेंटर्स में, प्रदर्शनी में, जहां वहां जाना है, बहुत खुशी से जाना है। अगर खुशी से नहीं जावेंगे और देखेंगे कि वो जिससे हमारी नहीं पटती है वो सामने खड़ा है, तो फिर एकदम फंक हो जाते हैं, समझा ना, जैसे कि एकदम मूर्छित हो जाते हैं। पीछे सर्विस क्या निकलेगी, जिनकी एक दो से नहीं पटती है, अगर प्रदर्शनी में गए एक दो को देखा खुशी उड़ जाएगी एकदम, क्योंकि दुश्मन को देखा ना। उनको उनका वो सारा परिचय दिल में आ जाएगा, तो फिर सर्विस पर उनकी दिल नहीं जाएगी। किनारा करते करते होता जाता है ऐसे बरोबर प्रदर्शनी, वो प्रदर्शनी में भी होता है। आएंगे यहां वहां देख करके उनको दिल तो लगेगी ही नहीं। सोचेंगे यहां से घुस करके चला जाएगा, बाबा को समाचार तो सब आते रहते हैं, ऐसे तो नहीं है कि कोई का या सभी के समाचार नहीं आते हैं। सभी सेंटर्स में देखो, ऐसे बहुत देखे, जिनका मुख न मिले दूसरे से, ऐसे तो होता ही नहीं है ना। तो वो तो फिर जैसे कि अज्ञानी जीवड़े हो गए। बिल्कुल अज्ञानी, फिर उनमें फर्क ही क्या रहा? उनको फिर महारथी कहेंगे। नहीं, वो तो ग्रहाचारी के अंदर आ गए। बल ज्ञान बहुत है पर ग्रहाचारी आकर के बैठती है देह अभिमान की। फिर ग्रहाचारी देह अभिमान की किसको न किसको गिराए देती है। तो पहले नंबर की बीमारी है ये देह अभिमान की, और यही बाबा मत्था मार रहे हैं। अरे बच्चों, आत्माभिमानी बनो। और ये प्यार समझो कि हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। परमात्मा और सभी आत्मा ही मिलकर ये सब कुछ करती है। ओम शांति।